मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं हितेश, आप बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं, प्रशांत महर्षि, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और सचिन मिश्रा, आपका गांव है बिहारिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो हितेश, प्रशांत और सचिन, आप तीनों युवा मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में आज मैं अपना वायदा निभाने जा रहा हूं और आज हम भारत रूस मैत्री के बारे में बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ न्यूज देख लेते हैं। सच पूछे तो कुछ न्यूज वैसी नहीं है, केवल 2 छोटी छोटी खबरें हैं। जहां तक एक खबर, आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा है, अभी उसे थोड़ा सा वॉच करते हैं, देखते हैं कि वो क्या रूप लेता है, उस क्या स्वरूप होता है, तब उस पर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपके ध्यान में केवल इसलिए ला दिया है कि थोड़ी सी इस खबर को ध्यान देते रहेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज है, सच पूछे तो वैसे तो वो न्यूज नहीं है, लेकिन जो आपका 4th पेपर है जनरल स्टडीज का, उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण का काम करेगा। और उदाहरण ये है मित्रों की जो आम्रपाली समूह है, अखबारों में भी आज काफी है ये कि आम्रपाली एक बहुत बड़ा बिल्ड मतलब कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर है उन तीनों को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया। और उसका कारण यह है कि कोर्ट जो भी उन्हें आदेश दे रहा था अभी तक कि आप ये दीजिए, ये जो समूह है ये उसका पालन नहीं कर पा रहा था। मैं केवल जनरलाइज करके आपको बता रहा हूं, है ना, मैं घटनाओं पे नहीं जा रहा हूं कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। बात नहीं मान रहा था, कह लीजिए वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा था, तो अंत में फ्रस्ट्रेट होकर के कह लीजिए न्यायालय ने, या एक अपमान की बात है कि आप सोच करके देखिए कि अगर कोई राज्य का आदेश न माने जो वैधानिक आदेश है, यदि कोई कोर्ट का आदेश न माने जो एक वैधानिक आदेश है, तो फिर व्यवस्था चलेगी कैसे? नहीं चल सकती। तो उठा करके उन्होंने पुलिस की हिरासत में दे दिया। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है उसे समझिए। तो एक घटना हो गई, यहां बात यह है मित्रों की खासकर भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां एक प्रवृत्ति देखने में आ रही है, शुरू से है, मतलब अभी ही कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि अब तो सच पूछे तो उस पर थोड़ा सा लगाम लग रहा है कि ये सब सामंतवादी समाज रहे हैं, राजा महाराजाओं के सामंत रहे हैं और ये सब अपने ढंग से मनमानी काम करते थे। चलिए आदेश आजाद हो गए या वहां जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम आने के बाद भी जो सत्ता पर नियंत्रण रहा, इनफैक्ट वो कहीं न कहीं इन पुराने सामंतों का ही रहा, पहली बात। दूसरा, नए सामंत वर्ग पैदा हुए। ये नए सामंत वर्ग कौन से थे, चाहे आप इन्हें पूंजीपति वर्ग भी कह सकते हैं, चाहे क्या मतलब उस वर्ग को आप शामिल कह सकते हैं जिसमें पूंजीपति वर्ग के लोग हो गए, दूसरे राजनेता या जिनके पास राजनीतिक शक्ति आ गई, जो पहले तो किसी सामंत वर्ग में नहीं थे लेकिन किसी तरह से उन्हें राजनीतिक शक्ति मिली, फिर राजनीतिक शक्ति लगातार वो एक्वायर करते चले गए, तो इनके हाथ में शक्ति आ गई। तो इनके हाथ में जब शक्ति आ गई तो ये अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर समझने लगे कि नहीं नहीं ये जो कानून है ये आम लोगों के लिए है, हमारे लिए कानून नहीं है। और सच पूछे तो अभी तक जिस तरीके से व्यवस्था का विकास होता रहा है वो इनको प्रूफ भी करता रहा है। कानून, आप सोच करके देखिए कि कानून किसके लिए है। एक आपको केस दायर हो जाता है अगर किसी पैसे वाले के खिलाफ, तो पहले सेशन कोर्ट में 5-10 साल चलेगा, फिर वो हाई कोर्ट में 5-10 साल चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में 10-20 साल चलेगा। मतलब कल का ही आंकड़ा है, अगर आपने आर्टिकल में पढ़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट में 50,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ठीक है वहां पड़ा रहे। और ये जो धनी वर्ग है ये बकायदे अपील करने की ताकत रखता है, तो इनके मन में उस तरह का भय नहीं था। और भय इसलिए नहीं था, इनको लगता था कि यार मैनेज कर लेंगे, कुछ तो कानूनी रूप से मैनेज कर लेंगे अपील कर करके, और कुछ वैसे मैनेज कर लेंगे। तो ये जो घटना घटित हुई है, और इससे पहले इस तरह की और भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, वो इस बात को शो करता है कि अब शायद वो जो मैनेज कर लेंगे कि उनकी सोच है उस पर थोड़ी सी चोट पहुंचे और उनके मन में ये भय पैदा हो कि नहीं कानून अपना काम करेगी। और सच पूछिए तो यही रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का शासन हम इसी को ही कहते हैं, जहां सभी कानून के समक्ष सभी समान हो। तो इस रूप में आप इस घटना का उल्लेख कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, राइट। मित्रों बस यही खबर थी, अब मैं आता हूं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य विषय पर, वो है भारत रूस मैत्री। इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं इससे पहले कर चुका हूं, उसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा मित्रों, क्योंकि समय की बेहद कमी होती है। भारत ने अभी एस जो 400 मिसाइल्स प्रणाली खरीदी है उसको लेकर के, और अमेरिका के क्या रिजर्वेशंस थे, क्या चेतावनियां थी, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा कि भारत और रशिया का बैकग्राउंड क्या है, दोस्ती का बैकग्राउंड। इनफैक्ट सच पूछिए तो भारत का सबसे पुराना दोस्त, मतलब आजादी के बाद से सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय दोस्त अगर कोई रहा है, घनिष्ठ दोस्त कोई रहा है, तो वो रशिया ही था। अगर हम इतिहास में चले जाएं तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 1468 में, 1468 में एक रशियन ट्रेवलर था, यात्री था, जिसका नाम था निकितिन, वो भारत आया था और भारत यात्रा के उसने बकायदे संस्मरण भी लिखे हैं। यहां से हमारी निकटता की शुरुआत हो जाती है। अगर हम आजादी के बाद से इसको लें, देखिए तो प्रधानमंत्री हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो उससे पहले ही समाजवादी व्यवस्था के बड़े समर्थक रहे हैं। तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो उससे लगभग 30 साल पहले रूस में क्रांति हो चुकी थी और वहां साम्यवादी व्यवस्था कायम हो चुकी थी। पंडित नेहरू उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो भारत में भी जो समाजवादी समाज की स्थापना की बात आई, जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो बात आई, जो हमारे यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मॉडल आया, ये इनफैक्ट सच पूछिए तो वो कहीं ना कहीं रशियन मॉडल से ही प्रभावित रहा है। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने भारत और रूस को एक दूसरे के निकट लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और रूस ने बकायदे समय समय पर अपनी इस घनिष्ठता को प्रमाणित भी किया है। यह जानना मित्रों बहुत जरूरी है। जैसे 2-3 मैं आपको उदाहरण इसके देना चाहूंगा, क्योंकि तथ्य होने चाहिए आपके पास, तर्क होने चाहिए ताकि आप अपनी बात कह सकें तथ्यों के साथ। कश्मीर को रशिया ने शुरू से ही भारत का अंग माना है। देखिए अभी मैं रशिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी इसका नाम रूस है। 1990 से पहले जब इसका विखंडन नहीं हुआ था तब यही था सोवियत संघ, है ना, USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, राइट। तो आप उसको समझ लीजिएगा, उस समय सोवियत संघ था। कश्मीर को हमेशा रूस ने भारत का अंग माना है, यहां तक कि जब गोवा को आजाद कराया गया, गोवा को भारत में मिलाया गया, मालूम है आपको कि गोवा पर पुर्तगाल का शासन था, आजादी के समय में गोवा हमारे अंडर में नहीं था, बाद में आजाद हुआ कराकर भारत में शामिल किया गया है, तो भारत के इस कार्य का समर्थन खुले रूप में रूस ने किया था, यह कम बड़ी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भी आपको ध्यान होगा कि रूस ने मध्यस्थता निभाई थी, ताशकंद समझौता आपको याद होगा। अनफॉर्चुनेटली वहीं हमारे उस समय जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनका निधन हो गया था। इसके बाद मित्रों 1971 में भारत और रूस के बीच एक बहुत ही जबरदस्त मैत्री संधि हुई, जिसे कहा जाता मैत्री एवं सहयोग की संधि, जो 20 वर्षीय संधि थी, 20 ईयर्स, और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और 1971 में फिर से जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उसमें तो इस संधि ने बहुत जबरदस्त रूप से काम किया, बहुत जबरदस्त रूप से काम किया है। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि विस्तार में जाने से थोड़ा सा फिर चीजें बहुत सी छूट भी जाएंगी, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच कर रहा हूं। देखिए 1971 में हुआ था, 20 साल की संधि थी, फिर 2000 में फिर से एक संधि हुई भारत और रूस के बीच में। अब आप देखिए कि जो 1971 से हुई 20 साल में 1991 में खत्म हो गई। 1991 में लिबरलाइजेशन का दौर हो गया, उसी के आसपास रशिया का विघटन भी हो गया, यानी कि रशिया यूं कह लीजिए कि कमजोर हो गया, राइट। इसके बाद भी भारत के साथ 2000 में एक संधि हुई उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इस संधि को कहा जाता है रणनीतिक साझेदारी की संधि। रणनीतिक साझेदारी, ये याद रखिएगा शब्द, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बेसिकली पांच मेजर कंपोनेंट पे डेवलप किया गया। इसके पांच मुख्य तत्व थे, ये भी आपको याद होने चाहिए, एक राजनीतिक पॉलिटिक्स, दूसरा डिफेंस, अभी जो हुआ वो डिफेंस के तहत हुआ, रक्षा, तीसरा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग शांति और विकास के लिए होगा। फिर आप देखें कि हमारे जो कुंडल कुदनकुलम में जो एनर्जी रिएक्टर है वो रशिया के ही उसमें है, तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी सहयोग, और स्पेस, अंतरिक्ष। भारत का जो आईआरएस सीरीज का पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था वो वास्तोक रॉकेट के जरिए छोड़ा गया था, जो रशिया का था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मदद मिल रही है, हर क्षेत्र में मदद मिल रही है, और इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी रूस का सहयोग मिलता रहा है। जैसे भिलाई का स्टील प्लांट जनरल स्टडीज में पूछ भी लिया जाता है, दुर्गापुर की जो कांच की फैक्ट्री है, भोपाल और दुर्गापुर में ही जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है वो रूस के सहयोग से बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश और अब तो खैर उत्तराखंड है, ऋषिकेश में जो एंटीबायोटिक दवाई बनाने वाली जो कंपनी है IDPL जिसको कहते हैं, ये बकायदे रूस के सहयोग से तैयार है। आपको यह भी मालूम होगा कि रूस ने भारत को बकायदे मिग लड़ाकू विमान दिया है, मिकोयान दिया है, और टी सीरीज के बकायदे टैंकर उपलब्ध कराए हैं। एक नाम आपने सुना होगा, अभी भी अखबारों में आपको पढ़ने को मिलता है, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र, ये मिसाइल है जो भारत ने डेवलप किया है। अब ये देखिए कि दोनों के बीच की दोस्ती का कितना खूबसूरत ये उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें उसका ले लिया गया ब्रह्म, और मास्को नदी है उसका ले गया ओस, और दोनों को मिलाकर के नाम रखा गया ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है ना, ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस। तो यह भी दिखा रहा है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच कितने घनिष्ठ और कितने सहयोगपूर्ण संबंध है। केवल इतना ही नहीं बल्कि देखिए, जब भारत सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता है, और उसके लिए भारत अपनी दावेदारी भी पेश करता है कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, उसका समर्थन रूस करता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रूस ऑलरेडी उसका स्थायी सदस्य है, वीटो पावर रूस के पास है। अब पांच जो देश है उन पांचों का समर्थन भारत को चाहिए, तो यह बहुत बड़ी बात है कि रूस उसका समर्थन कर रहा है। और रूस डिफेंस के मामलों में, रक्षा सहयोग के मामलों में तो सबसे बड़ा भारत का शुरू से साझेदार रहा ही रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि रूस ने हमेशा भारत के साथ एक दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा है, और ऐसा नहीं कि रूस ने ही किया है, भारत ने भी उसको उसी तरह से तरजीह दी है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस समय क्या रूस और भारत के संबंधों के गुणगान होते थे मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे यहाँ के जो राज कपूर साहब हैं, राज कपूर साहब की जो फिल्में हैं, नरगिस हैं, वो सब वहां इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि शायद भारत में उतने पॉपुलर ना हो, और बकायदे इन लोगों ने रूस की यात्राएं भी की हैं। भारत से अगर कोई रूस चला जाता था, राइटर या और दूसरे सांस्कृतिक ट्रुप्स, तो उनको इतनी तरजीह दी जाती थी, और ये नहीं कि केवल सरकार तरजीह दे रही है बल्कि वहां के लोग मतलब अपने को बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते थे भारत के साथ, और भारत के साथ भी ये था। उस समय मैगजीन्स निकलती थी, बड़ी सस्ती सस्ती मैगजीन्स थी, रूस के कितना साहित्य एकदम सस्ती सस्ती कीमतों पर मिला करता था, और हम लोगों ने उस समय रूस का साहित्य उन सस्ती कीमतों में ही पढ़ा है। चेखव को पढ़ा, गोर्की को पढ़ा, टॉलस्टॉय को पढ़ा, इन सबको हम लोग उस समय पढ़ चुके थे, और वो किताबें यानी कि केवल सस्ती थी बड़ी बल्कि बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध भी थी। ये जो मैं अभी दूसरी बात बता रहा हूं, ये सांस्कृतिक और किताबों की बात, इसे ही हम कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। नो डाउट फ्रेंड्स कि जब लिबरलाइजेशन का दौर आया तो एक तरह से साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त सी हो गई। भारत भी चूंकि शुरू से गुटनिरपेक्ष देश तो रहा ही है, ये नहीं कि भारत कोई रूस के ब्लॉक में शामिल हो गया था, रूस के गुट में शामिल था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बकायदे बनाए रखा। फिर स्वाभाविक है कि थोड़ा सा अमेरिका के नजदीक आता चला गया तो उससे रूस थोड़ा सा कहीं न कहीं उसके मन में कुछ खटास आई होगी, उसके अपने रीजंस होते हैं क्योंकि समय के हिसाब से डिप्लोमेटिक पॉलिसीज आपकी बदलती भी रहती हैं। तो इसके बाद फिर एक ध्रुव सा तैयार होने लगा, रूस और चीन एक दूसरे के निकट आने लगे, वैसे दोनों के यहां साम्यवादी व्यवस्था ही है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। अब उसमें धीरे धीरे पाकिस्तान भी निकट आता चला जा रहा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कूटनीतिक दृष्टि से, तो भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो रूस से फिर से एक बार अपनी दोस्ती को गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ाए, और याद रखे कि रूस की भी यह इतनी ही बड़ी जरूरत है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने आपको भारत और रूस मैत्री की दी है, और जब आप किसी किताब से इसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मित्रों आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं: प्रद्युम्न मिश्र, आप मिश्रौली नरसिंहपुर उत्तर प्रदेश से हैं; रेखा द्रविड़ फिरोजपुर पंजाब से हैं; और अनिल किलानिया नवलगढ़ राजस्थान से हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।